हरे कृष्ण। आज बहुत शुभ दिवस है, भगवान श्री नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस, आविर्भाव दिवस। आज ही के दिन पर नरसिंह देव प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए थे, तो कुछ उनके विषय में आज सुनेंगे। श्रीमद् भागवत का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जो भगवान नरसिंह देव के लिए कहा गया है, तो इस श्लोक को दोहराएंगे। आप सब दोहराइए और फिर इस पर चर्चा करेंगे। सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितम् व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्तद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितम् व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्ययत्यात्पद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् आप में से कोई एक दोहराए श्लोक को।
सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितम् व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्ययात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्।
माताजियों में से कोई दोहराना चाहेंगे श्लोक को? थोड़ा जोर से।
व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्ययात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्।
इसका अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं, यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य, जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा, कहाँ तुम्हारा भगवान है, क्या वह इस खंभे में उपस्थित है, तो प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। अतएव हिरण्यकश्यपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन अकाट्य रूप से सत्य था, भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकश्यपु यह जान नहीं पाया कि यह विराट देव सिंह है या मनुष्य। प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कौन्तेय प्रतिज्ञानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की बार बार धमकियां दे चुका था, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। खंभे से प्रकट होकर भगवान ने मानो ये कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया हो, चिंतित नहीं होना, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख लिया कि हिरण्यकश्यपु का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य का था और न ही सिंह का कहा जा सकता था। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण। आप सबके आभारी हैं कि आप सब यहाँ नरसिंह देव का प्राकट्य मनाने के लिए आए हैं, भगवान नरसिंह देव की कृपा प्राप्त करने के लिए। आज के दिवस पर भगवान अवतरित हुए। अवतार का अर्थ होता है वो जो नीचे आते हैं, अपने धाम को छोड़कर इस पृथ्वी पर आते हैं, उन्हें अवतार कहते हैं। अवतरति इति अवतारः। जो अवतरति, जो नीचे उतरते हैं अपने स्थान से, अपने धाम से, तो फिर ऐसे भगवान को अवतार कहते हैं। वैसे अवतार कई श्रेणियां होती हैं। शास्त्रों में अवतारों की अलग अलग श्रेणियां, अलग अलग कार्य दिए गए हैं। भगवान किसी उद्देश्य से आते हैं। जब भी अवतार लेते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है भगवान का। जैसे नरसिंह देव के रूप में आए तो भगवान वध करना चाहते थे हिरण्यकश्यपु का, या कहना चाहिए प्रहलाद की रक्षा करना चाहते थे। इसीलिए नरसिंह देव को जब भी कभी भक्त कष्ट में होते हैं तो नरसिंह देव को पुकारते हैं, क्योंकि नरसिंह देव ये रक्षा करने के लिए आए हैं। हम सब की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, विशेषतः उनकी रक्षा करने के लिए जो भगवान को समर्पित हैं, जो भगवान को पुकारते हैं हृदय से, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। फिर वो छोटा सा बालक ही क्यों ना हो प्रहलाद की तरह, या फिर अर्जुन की तरह उनका मित्र ही क्यों ना हो, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। तो जब नरसिंह देव के रूप में आते हैं तो ये विशेष रूप है उनका, करुणा का रूप, ये बड़े प्रेम का रूप है। हम लोग तो नरसिंह देव को बड़े क्रोध में देखते हैं, ऐसे वो फाड़ रहे हैं हिरण्यकश्यपु को अपने नाखूनों से। लेकिन दरअसल ये प्रेम भगवान का है, भगवान और भक्त के बीच आदान प्रदान है प्रेम का। जिस समय प्रकट भी हो रहे थे नरसिंह देव, जैसे हम लोगों ने अभी अभी भागवत के तात्पर्य में पढ़ा, अपने भक्त को ये बताने के लिए कि चिंता नहीं करो, मैं हूँ यहाँ पर, तुम्हारे वचनों को सत्य करूँगा, इस चीज़ को बतलाने के लिए नरसिंह देव प्रकट हुए, या कहना चाहिए अपने भक्त को प्रेम दर्शाने के लिए प्रकट हुए। थोड़ा बच्चों को चुप कराइए, इतना ज़्यादा सभी लोगों का ध्यान जा रहा है। नहीं तो बच्चे थोड़े बाहर जा सकते हैं, अगर छोटे बच्चे हों तो उनको लेके बाहर आप बैठ सकते हैं। तो नरसिंह देव जब प्रकट होते हैं आज के दिवस पर, तो उन्हें अवतार कहते हैं, अवतारती, और उद्देश्य भक्त की रक्षा। जब हिरण्यकश्यपु का आतंक बहुत बढ़ गया था तो सारे देवता भगवान के पास गए, प्रार्थना करने लगे कि कुछ कीजिए। तो उस समय भगवान ने उनको घोषणा की थी कि जब ये हिरण्यकश्यपु मेरे भक्त प्रहलाद को बहुत ज़्यादा कष्ट देगा, मैं उस समय प्रकट होऊंगा। तो आज भी जब भक्तों को बहुत कष्ट होता है तो भक्त नरसिंह देव को पुकारते हैं। ऐसे कई प्रसंग हुए हैं अभी पिछले कुछ वर्षों में, जहां भक्तों ने नरसिंह देव की रक्षा को देखा है। पाश्चात्य जगत में जहां पर भगवान को माना नहीं जाता, वहां पर भी अभी कुछ वर्षों पहले ऐसी एक घटना हुई कि एक छोटी सी बच्ची जो खेल रही थी सड़क पर, भक्त की थी, भक्त के घर में जन्म लिया था, भगवान नरसिंह देव की पूजा करती थी, छोटी सी बच्ची थी, सड़क पर खेल रही थी, एक गाड़ी बड़ी तेजी से आई और उसको उड़ा दिया, और सब ने देखा, और उसके जो माता पिता थे वो तो सोच रहे थे कि अब ये बचेगी नहीं। वहाँ से एक पुलिस वाला जा रहा था, उसने देखा, तो देखा कि कैसे गाड़ी से एकदम धक्का लगा और वो गिरी जाकर, तो वहाँ पर झाड़ियों में पेड़ में गिर गई। तो सब सोच रहे थे कि ये तो मर गई होगी, भाग कर पहुँचे, फिर उसको वो बेहोश हो गई थी, उसको उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसको बड़ी अच्छी तरह से चेक किया और डॉक्टर ने कहा इसको तो कुछ नहीं हुआ है। पुलिस वाला भी साथ में था, पुलिस वाले ने कहा मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, एक ट्रक ने इतनी ज़ोर से उड़ाया था, इसकी तो एक भी हड्डी नहीं बची होगी, आप फिर से ठीक से चेक कीजिए। डॉक्टर ने कहा मैंने पूरा चेक कर लिया, इसको कुछ नहीं हुआ, ये बच्ची ठीक है। तो जो पुलिस वाला था वो तो भक्त नहीं था, उसको विश्वास नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर जब वो होश में आई तो उसको पूछा बच्ची को कि क्या हुआ था, तो बच्ची ने बताया कि मैं खेल रही थी, अपनी गेंद लेने जा रही थी, अचानक मुझे किसी ने गोदी में उठाकर पेड़ के वहाँ फेंक दिया, मुझे वहाँ रख दिया, पता नहीं क्यों, और आगे मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। तो उस समय उसके माता पिता ने बतलाया कि दरअसल बच्ची भगवान नरसिंह देव का नाम ले रही थी, तो इसीलिए बड़े प्रेम से नरसिंह देव ने उठाकर रख दिया होगा। लेकिन वो जो पुलिस वाला था उसको विश्वास ही नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी आँखों से देखा कि ट्रक ने इतनी ज़ोर से एक छोटी बच्ची को उड़ा दिया। तो आज भी नरसिंह देव भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए बड़ा आवश्यक है कि हम भगवान नरसिंह देव की कथा को ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चले गए ये सोच कर कि मैं भोग करूंगा, आनंद लूंगा। हम लोग भी ऐसे कई स्थानों पर जाते हैं, आनंद को ढूंढने के लिए भूल जाते हैं कि सच्चा आनंद भगवान के पास है। अलग अलग जगहों पर ढूंढते रहते हैं। जैसे एक बार एक बहुत अमीर आदमी ट्रेन में जा रहा था, तो एक चोर भी उसके पीछे पीछे हो लिया, उसके साथ हो लिया, उससे मित्रता कर ली। उद्देश्य ये था कि ट्रेन में कभी तो ये व्यक्ति कहीं जाएगा और जैसे ही जाएगा इसका जितना धन है मैं ले लूँगा। तो ट्रेन काफ़ी लंबी जर्नी थी, बहुत लंबा सफ़र था। तो ट्रेन चलती और जब भी ये जो अमीर आदमी था ये जब भी कहीं बाहर जाता, जैसे कोई स्टेशन आता तो उतर कर चला जाता कुछ लेने के लिए, कुछ खाने के लिए। इस बच्चे के माता पिता कोई हैं तो इसको बाहर कीजिए प्लीज़। हम लोगों को कुछ जैसे वो होता है ना कि कुछ बच्चों को अलाउड नहीं अंदर, कैसे कुछ पता नहीं, कुछ जैमर्स कुछ मंदिरों में मोबाइल के वेव्स अंदर नहीं है, मतलब मंदिर में मोबाइल नहीं चले इसलिए कुछ लगाया जाता है। आपका मोबाइल चलता ही नहीं है, कुछ भी आप कर लीजिए, पता नहीं ऐसे बच्चों के लिए आता हो शायद, लगा दे तो बच्चे आवाज़ नहीं करें अंदर आकर, बाहर जाकर आवाज़ करें, ऐसा कुछ होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें बच्चों से प्रेम नहीं है, लेकिन हमें कृष्ण से भी प्रेम है। और कृष्ण कथा करते समय फिर जब बच्चे, तो बच्चे हैं वो तो अपनी बात कहेंगे ही, तो बाकी सबको फिर सुविधा नहीं होती, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि बच्चों को बाहर रखें। तो ये व्यक्ति जो अमीर व्यक्ति था ये ट्रेन में तो चला जाता था, जैसे ही बाहर जाता है जो चोर था सारा उसका सामान ढूंढता, कभी इधर देखता कभी बैग देखता, तब तक वो आने वाला होता फिर चुप बैठ जाता। तो सब कुछ देख लिया उसने, जब भी वो कहीं जाता कहीं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए जाता तो जल्दी से उसका कपड़े देख लेता, बैग देख लेता, कहीं ऊपर कुछ तो नहीं रखा है, सब देख लिया। अब अगला दिन हो गया, ट्रेन जहाँ जानी थी पहुँचने वाली थी उतरने का समय आ गया और चोर को 1 रुपया नहीं मिला। परेशान हो गया कि अरे इतना अमीर आदमी, ये अमीर आदमी है कि कंगाल है, कुछ लेकर ही नहीं चल रहा है। लेकिन उसको पता था आदमी तो बहुत अमीर है और धन होगा इसके पास। तो खैर जब उतरने का समय आया, थोड़ा सा समय बाकी था, तो उस चोर ने हाथ जोड़ दिए उस अमीर आदमी को और उसने कहा कि दरअसल मैं एक चोर हूँ, आपके साथ चोरी करने आया था लेकिन मुझे 1 रुपया नहीं मिला। आप ये बताइए कि आपने धन छुपा कर कहाँ रखा है, इतने बड़े आप चतुर व्यक्ति हो गए कि आपका धन आपने कहाँ रखा है वो भी हमें नहीं पता चला। तो इसलिए कृपया करके मुझे बताइए कि कहाँ धन है, थोड़ा मोबाइल पर बाहर बात करें, यहाँ नहीं बात करें। एक तो मोबाइल्स बंद रखें अपने, जितने जिनके पास भी मोबाइल्स हैं कृपया बंद रखिए, साइलेंट पे रखिए, और अगर बात बहुत ज़रूरी है तो कृपया बाहर जाकर बात कीजिए। हो सकता है कृष्ण कथा से ज़रूरी कोई काम हो तो कृपया बाहर जाके कीजिए। तो उस व्यक्ति से उसने हाथ जोड़ दिए और पूछने लगा कि आपने रखा कहाँ है, मुझे 1 रुपया नहीं मिला, इतने समय से मैं ढूंढ रहा हूँ कल से पूरा दिन। तो उसने, वो जो चोर था उसका जो बिस्तर लगा हुआ था, कपड़े लगे हुए थे, उसके नीचे से उसने एक पोटली निकाली और उसमें सारा उसका धन था। बोले ये देखो यहाँ रखा हुआ था सारा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम सब जगह ढूंढोगे लेकिन अपने पास कभी नहीं ढूंढोगे, तुम्हारे ही नीचे कहीं रखा है तो कभी नहीं ढूंढोगे, तो मेरे कपड़ों में ढूंढोगे, मेरे बैग में ढूंढोगे और स्थानों पर। तो इसी तरह हम लोग अलग अलग जगहों पर जाकर आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं, ये भूल जाते हैं कि आनंद हमारे हृदय में ही है, भगवान हमारे हृदय में है, जो सारे आनंद का स्रोत हैं, जिनसे सारे आनंद आते हैं वो तो हमारे हृदय में है। इसीलिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आनंद लेने के लिए, केवल भगवान से संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता, और ऐसा संपर्क प्रह्लाद महाराज ने किया। जब भगवान से संपर्क हो गया प्रहलाद का, तो कितने ही कष्ट उनके पिता ने क्यों नहीं दिए होंने, और क्या क्या कष्ट नहीं दिए, सांपों के बीच में फेंक दिया, लेकिन वहां अनंत शेष जो सर्पों के स्वामी हैं उन्होंने आदेश दिया सारे सर्पों को, डसना नहीं इसे, भक्त है ये भगवान का। देखिए जब कोई भगवान का भक्त हो जाता है वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं करता, लेकिन बाकी सारे उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जितने देवता हैं, जितने अन्य लोग हैं, जितने अन्य अवतार हैं, वो सब उसकी रक्षा करने तैयार, वो अपनी रक्षा नहीं करता। प्रहलाद महाराज ने कोई रक्षा नहीं की अपनी, तो प्रहलाद महाराज ऐसे ही थे, अचानक उसे उठा के ले गए, क्योंकि बहुत दुखी हो गया था हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से। जब उसके पुत्र को स्कूल भेजा, वापस आते हैं, जब आपका भी बच्चा स्कूल जाता है तो जब वापस आता है आप उससे पूछते हो क्या सीखा स्कूल में, तो बच्चा ए बी सी डी ए एफ जी सब बोलने लगता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। आजकल तो फिल्म के गाने गाता है तो भी आपको अच्छा लगता है कि हाँ चलो स्कूल में कुछ तो सीख कर आया। माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा बच्चा शाहरुख की तरह डांस करता है, या जो भी ऋतिक रोशन या पता नहीं कौन से रोशन है आजकल, जो भी है तो उनकी तरह नाच डांस करता है, इसलिए माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना। तो खैर जो भी है, स्कूल जाता है कुछ सीख कर आता है, माता पिता जानना चाहते हैं, ऐसे ही बड़े प्रेम से गोदी में बिठाते हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद को पूछते कि बताओ तुमने क्या स्कूल में सीखा है। तो प्रहलाद कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कि भगवान श्री विष्णु का स्मरण करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। और विष्णु कौन है, हिरण्यकश्यपु के शत्रु, वो तो पहले से मारना चाहता है विष्णु को, और उसका ही लड़का 5 साल का बच्चा उसको समझा रहा है विष्णु का कीर्तन करो। फिर क्रोध में आ जाते उठाकर, फिर भी सोचते चलो बालक है, इसको किसी ने पढ़ा दिया होगा, विष्णु के दूत जो हैं शत्रु ये आ गए होंगे मेरे स्कूल में। तो फिर भी पूछते कि अच्छा ठीक से बताओ और क्या क्या सीखा, कुछ अच्छी बातें बताओ, श्रेष्ठ बात क्या है। तब प्रहलाद महाराज कहते तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्वेग्न धियान असत्ग्रहान। अपने ही पिता को बता रहे हैं, पिता ने पूछा सबसे श्रेष्ठ बात क्या है, तो प्रहलाद महाराज कहते श्रेष्ठ बात तो ये है हे असुर श्रेष्ठ, इतने बड़े असुर, सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम वन में चले जाओ। हितवात पातम गृह अंधकूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयता, बहुत हो गया, तुमने बहुत अपना राज्य कर लिया, बहुत लोगों को तंग कर लिया, अब बुढ़ापा आ रहा है, जाओ वन में जाओ। बताइए 5 साल का बच्चा अपने, आपका 5 साल का बच्चा आपकी गोदी में बैठकर ऐसे बोले आपको, तो बताइए क्या हालत होगी आपकी। हैं अब बड़े प्रेम से उसको बिठाओ, सर पे हाथ सहलाओ, बेटा क्या सीखा, क्या सबसे अच्छी बात है, और बेटा कहे कि आप अभी वन में चले जाओ, बूढ़े हो रहे हो। तो हिरण्यकश्यप सोचिए उसकी क्या हालत हुई होगी, और वो भी क्या करो वन में जाके, हरि में आश्रय था, भगवान हरि का आश्रय लो। तो बड़े क्रोध में आ गया, उनके टीचर्स को बुलाया, क्या तुमने सिखा के रखा। बोले हमने कुछ नहीं सिखाया, पता नहीं कहाँ से सीख लेता ये सब, हम तो उल्टा चीज सिखा रहे हैं ये तो ठीक है ले जाओ इसको फिर से सिखाओ। तो ले जाते वो लोग सिखाते, वो प्रहलाद को पूछते तुम्हें ये सब पता कौन, कैसे चलता है, कौन बताता है ये सब आकर, ये सब उल्टी सीधी बातें कौन सिखाता है, हम तो नहीं सिखाते। और प्रहलाद महाराज तो इतने कहना चाहिए हिरण्यकश्यपु की दृष्टि से दुष्ट हो गए कि पहले तो खुद ही बोलते थे, अब अपने सारे मित्रों को बिठाकर प्रचार करने लगे। सबको बिठाते थे और उनको बोलते थे कि अरे तुम लोग दानव परिवार में जन्म लिया है, लेकिन जान लो किसी भी कुल में जन्म लिया हो भगवान की भक्ति आवश्यक है। तो प्रहलाद के मित्र सब छोटे छोटे थे 5 साल के, तो पूछे सच में भगवान की अरे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन ये राजा हिरण्यकश्यपु वो पागल है, उसकी मत सुनो, शास्त्र की सुनो, विष्णु। अच्छा तुम्हें कैसे पता ये सब, तुम कहाँ से जानते हो। मैंने सुना है नारद मुनि से, बड़े महान भक्त हैं। अच्छा तो नारद मुनि क्या हिरण्यकश्यपु से भी श्रेष्ठ। अरे बहुत श्रेष्ठ है। अच्छा कितने श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ। हिरण्यकश्यपु उनको मार सकता है, बिल्कुल नहीं मार सकता। अच्छा तो फिर वो कहते थे, तो ऐसे प्रचार करने लगे, तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि सारे स्कूल में सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, विष्णु का नाम ले रहे हैं। अब जो जो टीचर्स थे, तो ये क्या हो गया, हिरण्यकश्यपु को पता चले गया तो हमारा गला काट देगा, तो पकड़ के लेकर गए और उन्होंने कहा कि पहले तो ये अकेला था, अभी तो सबको खराब कर रहा है, आप इसका कुछ कीजिए। तो बहुत गुस्सा आया हिरण्यकश्यपु, कहने लगा कि हमारे कुल में ये सांप कहाँ से पैदा हो गया, चंदन की लकड़ी पर सांप की तरह है ये, मतलब अपने आप को चंदन कह रहा था, चंदन की लकड़ी, और प्रहलाद महाराज सांप है, तो ये कहाँ से सांप उत्पन्न हो गया हमारे कुल में। फिर भी उन्होंने आखिरी बार प्रयास करना चाहा, उसके पहले उन्होंने मरवाने का बड़ा प्रयास किया, और जब मरे नहीं प्रहलाद महाराज तो डर गया हिरण्यकश्यपु की, ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, इसको छोड़ देना चाहिए। तो पहले बहुत प्रयास किया मारने का, तो सांपों के बीच में फेंकवा दिया, तो अनंत शेष ने कह दिया इस हर सांप को कुछ नहीं करना, तो सांपों के बीच में आराम से पर्वत के ऊपर ले गए, वहां से फेंक दिया नीचे कि मर जाएगा। अब 5 साल के बच्चे को आप पर्वत के ऊपर से फेंक दो तो क्या बचेगा, उसका तो हड्डी भी दिखाई नहीं देगी। लेकिन प्रहलाद महाराज को ऐसे लगा कि जैसे दोनों हाथों से भगवान ने पकड़कर उसको बड़े आराम से नीचे बिठा दिया। अस्त्र शस्त्र से मारने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। अग्नि में जलाने का प्रयास किया, ऐसा कहा जाता है कि उनकी एक बहन थी होलिका, तो उसके साथ बिठा दिया, उसको वरदान था ब्रह्मा जी का कि जलोगी नहीं अग्नि में, तो वो तो जलने वाली नहीं है, गोद में लेकर बैठ गई कि ये मैं तो नहीं जलूंगी, ये जल जाएगा। अब अग्नि में लेकर बैठी हैं प्रहलाद महाराज को, और देखिए प्रहलाद महाराज कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, सांपों के बीच में फेंका, पर्वत के ऊपर से फेंका, अग्नि में फेंक दिया, प्रहलाद महाराज शांत हैं। क्यों? प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, उनको प्रहलाद महाराज को पूर्ण विश्वास था कि भगवान रक्षा करेंगे, इसलिए चिंता ही नहीं। ये श्रद्धा चाहिए, निर्भयता श्रद्धा से आती है। अगर हम लोग भय से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। जितनी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा भय से वो दूर हो जाएगा, लेकिन जितना वो श्रद्धा से श्रद्धा नहीं रखेगा, इस जगत में आसक्ति रखेगा, तब वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, भय से मुक्त नहीं हो पाएगा, भयभीत रहेगा हमेशा। क्योंकि हम सब इतने आसक्त हैं इस जगत में, इस जगत की छोटी छोटी चीजों से, व्यक्ति अपने बच्चों से आसक्त रहता है, अपनी पत्नी से आसक्त रहता है, अपने धन से आसक्त रहता है, और कभी कभी आसक्ति इतनी बढ़ती है। एक कथा है बीरबल की, एक बार अकबर और बीरबल रात्रि के समय दोनों गए, ऐसे ही वेश बदल कर घूम रहे हैं, तो एक घर के बाहर उन्होंने देखा कि झगड़ा हो रहा है घर के अंदर पति पत्नी का, और पत्नी बहुत जोर जोर से डांट रही है पति को, और पति बेचारा चुपचाप। खैर हम जो ये कह रहे हैं ये तो हर घर की कहानी है, लेकिन यहाँ पर तो बोलनी नहीं चाहिए सबके सामने, मगर थोड़ा बहुत कभी कभी आप सबको जो गृहस्थ हैं बड़ा दुख होता होगा ये सब सुन कर के, अरे इनको कैसे पता चला है, तो कल ही हमारे घर में हुआ था। खैर तो पत्नी बड़े जोर से डांट रही है, और तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया। अकबर ने कहा कैसा पति है इतनी डांट रही है और पत्नी चुपचाप सुन रहा है। तो बीरबल ने कहा महाराज हर कोई आसक्त तो होता है पत्नी से, पत्नी के आदेश का ही पालन करते हैं। तो अकबर ने कहा मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने कहा ठीक है कल आपको दिखाएंगे। तो अगले दिन जितने भी पुरुष थे सबको बुलाया दरबार में, खड़ा कर दिया, और बीरबल ने घोषणा की। तो अकबर देखना चाहते थे एक तो ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने पत्नी का आदेश का पालन नहीं करता। तो बीरबल ने घोषणा की, ऐसे खड़े थे कि जो भी लोग अपनी पत्नी से डरते हैं या पत्नी के आदेश का पालन करते हैं वे सब इस तरफ आ जाएं। तो सारे लोग इधर चले गए, एक व्यक्ति खड़ा रह गया इधर ही, सब चले गए। तो अकबर को बड़ा दुख हुआ, ये क्या मेरी प्रजा है, लेकिन एक व्यक्ति दिखा। तो अकबर ने कहा देखो कम से कम एक व्यक्ति है मेरे राज्य में जो अपनी बीवी से डरता नहीं, अपनी पत्नी से डरता नहीं है, उसके आदेश का पालन नहीं करता। तो उसको बुलाया अकबर ने, बड़े प्रसन्नता से कुछ उपहार देना चाहते थे। लेकिन उपहार देने के पहले अकबर ने पूछ लिया कि सब लोग वहाँ चले गए, आप क्यों नहीं गए, आप क्यों वहाँ खड़े रहे? तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा था कि सबके साथ में नहीं रहना। तो इसलिए मैं दूर था वहां पे। अकबर ने कहा अरे एक भी व्यक्ति नहीं मिला। आसक्ति, तो किस लिए ऐसा व्यक्ति हो जाता है? क्योंकि आसक्ति बहुत है हम सबको। कभी बच्चों से आसक्ति होती है, कभी पत्नी से, कभी धन से, और यही आसक्ति हमारी श्रद्धा को कमजोर करती है। तो हम भगवान में श्रद्धा नहीं रख पाते, अपने आप पर हमें विश्वास नहीं रहता, भगवान पर क्या विश्वास करेंगे। श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा बढ़ती है भक्तों के संग में। हम जब भक्तों के संग में आते हैं, एक साथ बैठते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, तब श्रद्धा बढ़ती है। और अगर श्रद्धा बढ़ जाए तो फिर कोई भय नहीं रहता। जैसे अर्जुन, युद्ध चल रहा है, भीष्म ने घोषणा कर दी कि कल मैं पांडवों को मार दूंगा, और रात्रि के समय अर्जुन बड़े आराम से सो रहे हैं, कृष्ण इधर से उधर घूम रहे हैं। फिर कृष्ण को गुस्सा आया कि अरे ये इतना आराम से सो रहा, उठाया अर्जुन को, अर्जुन उठो। तो अर्जुन उठा, क्या हो गया, युद्ध शुरू हो गया क्या? तो अरे युद्ध नहीं शुरू हुआ, तुम सो कैसे सकते हो इतने आराम से, क्यों, क्या हुआ? अरे पता नहीं है कि भीष्म ने घोषणा की है कल मारने वाले, तुम्हें कोई चिंता नहीं है? तो अर्जुन ऐसे करते हुए बोलने लगा, आप है ना चिंता करने के लिए, सो जाता। ये श्रद्धा है, मरने वाला है लेकिन चिंता। तो ये श्रद्धा थी प्रहलाद महाराज की। रात्रि के समय एक बार सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उसको उठाकर समुद्र में फेंकाओ, और उसके गले में बड़ा सा पत्थर बांध देना और समुद्र में फेंक देना। तो रात के समय गए, ये सोचकर कि प्रहलाद महाराज सो रहे होंगे, तो देखा प्रहलाद महाराज बैठे हुए हैं, अपने ही बिस्तर पर बैठे हुए, सोए नहीं। तो उन्होंने सोचा रे सोया नहीं है। दरअसल प्रहलाद महाराज उस समय ध्यान में थे भगवान के, इसके लिए उनको कुछ पता नहीं था बाहर क्या हो रहा। सैनिक आए, उन्होंने प्रहलाद को उठाया, लेकर गए समुद्र के किनारे, आए पत्थर बांधा बहुत बड़ा और फेंक दिया अंदर। प्रहलाद महाराज अभी भी ध्यान में थे भगवान के, उनको कोई चिंता नहीं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। बहुत नीचे चले गए, तो जब नीचे गए तो समुद्र ने देखा कि अरे इतना महान भक्त और मैं इसको नहीं मार सकता, तो अपनी लहरों से उसने बाहर कर दिया। तो जब लहरें वहरें लगी और बाहर आए प्रहलाद महाराज, तो उनकी आंख खुली कि अरे क्या हो गया। तो बाहर बैठे हैं समुद्र के किनारे, और भूल गए कि समुद्र के किनारे हैं, क्योंकि तो घर पे सोए थे। और सामने समुद्र देव आ गए, जो देवता हैं समुद्र के, वो सामने आकर प्रकट हुए हाथ जोड़कर प्रहलाद महाराज से। तो प्रहलाद महाराज ने उन्हें देखा और कहा, अरे समुद्र देव आप कब आए मेरे घर में? उसने कहा, प्रहलाद मैं आपके घर में नहीं, आप मेरे घर में आए हो, जरा देखो घूम कर। तो देखा तो समुद्र पर बैठे। तो ऐसे प्रहलाद का ध्यान था और ऐसा विश्वास था, कोई भी कितने भी कष्ट दे लेकिन प्रहलाद बड़े आराम से, बड़ी शांति से, और इतना उनके अंदर गुण थे कि अपने ऐसे पिता को भी जो हमेशा उन्हें मारने का प्रयास करता है वो दंडवत प्रणाम किया करते थे। जब पिता के सामने आते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे। तो ऐसे वो एक दिन और आए, आज का दिन था जब बड़े क्रोध में था हिरण्यकश्यपु कि क्या बालक है, इसको सब तरह से मारने का प्रयास कर लिया। हिरण्यकश्यपु ने एक बार मारने के बाद फिर भेज दिया था स्कूल कि ये बालक तो शायद मेरी मृत्यु का कारण बनेगा और इसके कारण शायद भगवान आएंगे, विष्णु आएंगे। तो अब आज के दिवस पर फिर से उसने एक बार और प्रयास किया, गोदी में बिठाया अपने छोटे से 5 साल के बच्चे को, और फिर पूछने लगा कि बताओ क्या सीखा तुमने, अभी क्या सीखा। तो उस समय उन्होंने, प्रहलाद महाराज ने कुछ कहा तो फिर बड़ा गुस्सा हो गया। उसने कहा तुम्हें मुझसे, तुम्हारे पास ये बल आता कहां से है, ये प्रश्न कर लिया। इतनी शक्ति, 5 साल के बच्चे हो और मुझसे डरते, मैं तुमसे डर रहा हूं, मुझसे डरते नहीं, तो बल आता कहां से है? प्रहलाद महाराज ने बड़े आराम से उत्तर दिया कि अरे आपका ही नहीं, आपका मेरा सबका बल भगवान विष्णु से आता है। अब तो और गुस्सा आ गया उसको, पहले तो डर नहीं रहा, ऊपर से गुस्सा। और फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक बात और सुन लीजिए पिताजी, पूर्व काल में आप सोचते हैं ना कि आप बहुत कुछ नियंत्रण कर रहे हैं, आपने अपने हृदय में काम क्रोध मोह मद मत्सर्य को तो नियंत्रण किया नहीं है। ये छह शत्रु तो आपके अंदर बैठे हुए हैं और आप दुनिया को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बात सुन लीजिए, पूर्व काल में आप जैसे बहुत ऐसे मूर्ख हुए हैं। देखिए कितना, कौन कह सकता अपने पिता को, और वो भी जानता है कि वो तलवार लेकर मारने वाले हैं, लेकिन प्रहलाद बड़े, आप पढ़िए भागवत के श्लोकों में कहा गया, बड़े आराम से कहते कि आप जैसे मूर्ख बहुत हुए पूर्व काल में, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, अपने छह शत्रुओं को मारा नहीं और सारी दुनिया जीतने निकले थे, नाश हो गया उनका। इसलिए अभी भी कहता हूं भगवान की शरण लो। तो ये सुनकर तो अब रहा नहीं गया, उसने कहा अब तो मुझे ही कुछ करना है। उसने कहा ठीक है, तू तो मेरे ही हाथों मारा जाएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज भी सोच रहे थे आपका भी कुछ नहीं हो सकता। तो उस समय उन्होंने कहा क्या तुम्हारा भगवान सब जगह है, विष्णु सब जगह है? बोले हाँ सब जगह, इस खंभे में है? बोले हाँ खंभे में। तो बड़े गुस्से में उसे तलवार निकाली, मारने जा रहा था प्रहलाद महाराज को, और उसके पहले जोर से घूंसा मार दिया खंभे पर। बड़ा शक्तिशाली था, खंभे पर घूंसा मारा और एकदम खंभा टूट पड़ा आधा। तो सोच लीजिए कितना शक्तिशाली होगा। आप लोग कभी प्रयास कीजिएगा खंभे पर घूंसा मारने का, पता चलेगा क्या होगा। तो खंभा टूटने लगा, आवाज आई, बड़ा बड़ी भीषण आवाज। ऐसा कहा गया कि जो देवता थे वो घबरा गए कि प्रलय का समय आ गया शायद, इतनी आवाज हो गई ऊपर के लोकों तक। और फिर जैसे इस श्लोक में कहा गया, भगवान प्रकट हुए नरसिंहदेव, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान प्रकट हुए अपने कई भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए। पहले भक्त थे प्रहलाद, जिनकी वाणी को वो सत्य करना चाहते थे। प्रहलाद ने कह दिया इस खंभे में है, तो खंभे में प्रकट हो गए। दरअसल ऐसा नहीं था कि प्रहलाद ने आंखें बंद करके कह दिया था कि खंभे में। जिस समय हिरण्यकश्यपु ने दिखाया इस खंभे में है, तो प्रहलाद महाराज ने देखा और उनको वहां दिखे वो। ऐसा वर्णन है कि नरसिंह देव कह रहे थे हूं मैं, बोल दो हूं मैं, हाथ दिखा रहे थे। तो प्रहलाद ने कह दिया हाँ वो रहे सामने हैं। हिरण्यकश्यपु को नहीं दिख रहे थे लेकिन प्रहलाद को दिख रहे थे। तो पहले भक्त जिनकी बातों को सत्य करने के लिए भगवान आए वो है प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद ने कहा और भगवान प्रकट हो गए। दूसरे भक्त जिनकी बातों को सत्य करने के लिए भगवान आए वो हैं ब्रह्मा जी। जब हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने पूछा बताओ क्या चाहिए, तो उसने सारी अपना दिमाग लगा के कहा कि मैं पशु से नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, नहीं मरूं, नहीं मरूं, नहीं मरूं, मर गया अंत में। तो उनके वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने, और इसीलिए जब हिरण्यकश्यपु को मार दिया और ब्रह्मा जी खड़े थे, तो भगवान ने ऐसे थोड़ा सा धीरे से देखा ब्रह्मा जी की ओर। अब ब्रह्मा जी घबरा गए, जैसे भगवान बोल रहे थे तुम्हारे लिए ये सब मुझे करना पड़ा तुमने ही कहा ना कि पशु नहीं मनुष्य नहीं, ये सब तुम्हारी गलती है। तो ब्रह्मा जी ने दे दिया। तो दूसरे भक्त हुए ब्रह्मा जी की बातों को सत्य करने के लिए। और तीसरे भक्त थे स्वयं जय और विजय। जय और विजय को श्राप दिया था चार कुमारों ने, तो चार कुमारों की बातों को वो सत्य कर रहे थे कि जब जय विजय को उन्होंने कह दिया कि ये जल्दी वापस आएंगे। दरअसल जब जय विजय को चार कुमारों ने श्राप दिया, तो भगवान ने चार कुमारों से कहा था कि, और जय विजय ने भी कहा था कि कुछ भी हो हम जल्दी वापस आ जाए, बहुत ज़्यादा नीचे रहने की इच्छा नहीं है भौतिक जगत में। तो उनके वचनों को भी सत्य करने के लिए भगवान जल्दी जल्दी आए और इसको वध किया। तो अब भगवान प्रकट हुए खंभे से, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु देखने लगा इतना विराट रूप है कौन ये, और फिर उसने आक्रमण कर दिया भगवान पर, अपनी तलवार लेकर कूद पड़ा। बहुत युद्ध हुआ, भगवान भी थोड़ा खेल रहे थे, जैसे एक
बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, वो क्या करती है, चूहे की पूंछ दबा देती है, चूहा भागता रहता है, चूहा सोच रहा है मैं भाग रहा हूँ, वो पूंछ दबा के पड़ी पकड़े रहती है। तो ऐसे भगवान थोड़ी हंसी खेल रहे थे, तो कभी मारते थे तो कभी उनको मारता था हिरण्यकश्यपु, और ऊपर जो सारे देवता थे उनका तो उनका क्या कहते हैं कि सांस रुकी हुई थी कि कब मारे ये क्या कर रहे हैं, अगर ये मरा नहीं हिरण्यकश्यपु और हम लोग सब देख रहे हैं और उसने हमें देख लिया देखते हुए और आनंद लेते हुए, और अगर ये बच गया तब तो हमारा हमें छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए मारिए मारिए जल्दी मारिए। फिर खैर भगवान ने उसको मार दिया। संध्या का समय था, न दिन था न रात था, और चौखट पर दरवाजे पर मारा ताकि अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, नीचे नहीं ऊपर नहीं, तो गोद में रख के मार दिया, ना नीचे है ना ऊपर है। तो ऐसे भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा, और जब हिरण्यकश्यपु को मार रहे थे तो हिरण्यकश्यपु भी तो भगवान के भक्त है ना, तो हिरण्यकश्यपु देख रहे थे कि प्रहलाद हार लेकर खड़ा है। आपने वो चित्र देखा है भगवान का कि हाँ यहाँ है, सॉरी, तो देखिए प्रहलाद हार लेकर खड़ा है ना, कि मेरे पिता का वध करो फिर मैं आपको धन्यवाद दूंगा। देखिए भौतिक जगत में अगर कोई ऐसा करे कि उनके पिता का कोई वध कर रहा है और उसको हार पहनाने के लिए बेटा खड़ा है तैयार, कैसा लगेगा। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत भगवान की बात है। तो जिस समय हिरण्यकश्यपु बस मरने वाला था तो उसने देखा कि प्रहलाद हार लेकर खड़ा है, तो बड़ा दुख हो गया उसको। इसलिए दुख नहीं हुआ कि मेरा बेटा कितना नालायक निकला, मैं मर रहा हूं और ये हार पहनाएगा, उसको इसलिए दुख हो गया कि ये भगवान को कुछ तो अर्पण कर रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है अर्पण करने के लिए, वो भी तो भक्त हैं, जय विजय हैं। तो उसने सोचा कि ये इतना सुंदर रूप लिया है भगवान ने और मेरे पास कुछ है नहीं अर्पण करने के लिए, कम से कम मेरा बेटा देखो तो हार पहना रहा। तो भगवान समझ गए उसके हृदय की बात कि ये ऐसे सोच रहा है कि मैं कुछ अर्पण नहीं कर पा रहा हूं इसलिए दुखी हो रहा है। तो उसने क्या कि भगवान ने क्या किया, मारने के बाद उसकी जो आंतड़ियां थी उसकी आंतें निकालकर अपने गले में डाल दी भगवान ने स्वयं। तो ठीक है तुम हार नहीं पहना पा रहे हो, मैं ही पहन लेता हूं। भगवान ने हार पहन लिया, उसकी आंतों का हार। वैसे इस विषय में कई स्थानों पर बड़े अच्छे अच्छे वर्णन किए गए हैं। जैसे एक वर्णन ये है कि भगवान ने आंतें निकालकर इसलिए पहन ली ताकि वो स्वीकार कर रहे थे हिरण्यकश्यपु की सेवा, और बैठे भी उसके सिंहासन पर थे तो उसकी सेवा स्वीकार कर रहे थे। और एक कर्नाटक में बड़े प्रसिद्ध भक्त हुए हैं कनकदास, उन्होंने भगवान के इस अवतार के विषय में लिखा है कि जब भगवान ने मार दिया हिरण्यकश्यपु को तो ऐसे उसका पेट फाड़ दिया और उसमें कुछ ढूंढ रहे थे, उसमें कुछ निकाल रहे थे। तो वो कहते क्या ढूंढ रहे थे नरसिंहदेव, वो ढूंढ रहे थे कि इसी के शरीर से मेरा एक भक्त प्रकट हुआ है प्रहलाद, दो तीन और होंगे अंदर, देखता हूँ कोई है क्या, और कोई भक्त तो नहीं रह गए अंदर। तो भगवान देख रहे थे निकाल निकाल के, आंतड़ियां डाल रहे थे। और एक भक्त कहते हैं कि भगवान अपना क्रोध दिखला रहे थे कि हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को कष्ट दिया, उनके इतने शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त को कष्ट दिया, इसीलिए क्रोध शांत नहीं हो रहा था, भगवान का क्रोध बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था, इसीलिए उसको फाड़ दिया, उसकी आंतड़ियां निकालकर गले में पहन ली। आप सोचिए ऐसा रूप अगर आपको देखने मिले क्या आप पूजा करोगे उसकी, क्या पूजा करेंगे आप, खून खून लगा हुआ है, चिल्ला रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। लेकिन प्रहलाद तैयार थे पूजा करने के लिए। तो ऐसे वर्णन किए गए हैं कि भगवान ने जब वध किया हिरण्यकश्यपु का तो क्या क्या हुआ। तो बड़े क्रोध में थे भगवान, क्रोध केवल इसलिए कि मेरे भक्त पर कैसे आक्रमण किया इसने। भगवान अपने भक्तों के प्रति कभी भी अपराध को सहन नहीं करते, इसीलिए भक्ति मार्ग में भगवान को प्रसन्न करने के मार्ग में एक सबसे बड़ी बाधा है और वो है भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करना। अगर हमसे भगवान के भक्तों के प्रति अपराध हो जाए तो फिर भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। और इसका उदाहरण है कि जिस समय दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास पहुँचे, जो बहुत महान भक्त थे। और उस समय अम्बरीश महाराज के ने अपराध तो नहीं किया था, लेकिन दुर्वासा ने मान लिया। और फिर दुर्वासा ने अम्बरीश महाराज को मारने के लिए एक राक्षस को उत्पन्न कर दिया कि मैं मार डालूंगा इसे। और अम्बरीश महाराज एक सरल भक्त हैं, कोई बहुत बड़े योगी नहीं, तपस्वी नहीं, राजा थे। लेकिन जैसे ही ऐसे हुआ, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, उस राक्षस को मारा और उसके बाद दुर्वासा के पीछे भागने लगे। और दुर्वासा भागे 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 अंत में भगवान के पास पहुंचे, चरणों में गिर पड़े वैकुंठ में भगवान के पास, और प्रार्थना करने लगे, बचाइए, आपके सुदर्शन चक्र से बचाइए मुझे। और उस समय भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, हे दुर्वासा मुनि, मैं भक्त के अधीन रहता हूं। तुमने अपराध भक्त का किया है, मैं क्षमा नहीं कर सकता, तुम्हें तो उनके पास ही जाना होगा, एक ही उपाय है। तो फिर भागकर वापस अम्बरीश महाराज के पास आए। फिर अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना की कि हे सुदर्शन चक्र, आप रुक जाइए। तब वो रुके। ये इतना सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत में दिया गया है हमें ये बतलाने के लिए कि अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो एक सरल उपाय, भक्तों की सेवा करना। जैसे श्रील प्रभुपाद समझाया करते थे, अमेरिका में लोगों को अपने कुत्तों से बहुत प्रेम है। देखिए, प्रेम करना स्वाभाविक है। अगर हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तो कुत्तों से प्रेम करेंगे, इसीलिए अच्छा है भगवान से प्रेम कर लिया जाए। अमेरिका में लोगों के पास ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे वो प्रेम कर सकें, भगवान का ज्ञान नहीं है, इसीलिए कुत्तों से प्रेम करते हैं। कभी कभी, अभी कुछ साल पहले, एक महिला, बड़ी अमीर महिला थी, मृत्यु हो गई और मरने के बाद अपना सारा धन अपने कुत्ते के नाम कर गई। अब बताइए, कुत्ते के नाम सारा धन, उससे तो सब लोग शादी करने तैयार हो जाएंगे, फिर पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, हमें पता नहीं। करोड़ों की संपत्ति कुत्ते के नाम कर गई। अब वो कुत्ता मल्टी मिलियनर कुत्ता, अब कुत्ता मल्टी मिलियनर भी हो तो करेगा क्या, सड़क पर जाके करने वाला और क्या होना उसका। तो इसलिए ये मूर्खताएं लोगों की। तो प्रेम कुत्ते से बहुत करते हैं वहां पर, अमेरिका में। तो प्रभुपाद कहते थे कि जैसे अमेरिका में अगर किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना हो तो उसके कुत्ते की तारीफ कर दो, वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इफ यू लव मी, लव माई डॉग, प्रभुपाद कहते थे। अगर मुझे प्रेम करते हो, मेरे कुत्ते को प्रेम करो, बस उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो किसी को, स्वामी को प्रेम करना है तो, प्रसन्न करना है तो, हमें उनके जो दास हैं उनको प्रसन्न कर देना चाहिए। इसी तरह भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान के जो भक्त हैं उन्हें प्रसन्न कर देना चाहिए, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर गुरु प्रसन्न हो जाएं, भक्त प्रसन्न हो जाएं, तो भगवान निश्चित प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर जैसे हमारे लिए दो लोगों को प्रसन्न करना है, भगवान को या भगवान के भक्त को, अगर हमने भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान के भक्त प्रसन्न नहीं हुए तो फिर जीवन की कोई गति नहीं। लेकिन हमने भगवान के भक्त को प्रसन्न कर लिया, भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि भगवान को प्रसन्न होना ही पड़ेगा, भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। तो फिर अब हिरण्यकश्यप को मार दिया उन्होंने, और उस समय सारे जो देवता वहां पर उपस्थित हुए थे सब घबराने लगे, क्योंकि बड़े क्रोध में थे, शांति नहीं हो रहा था क्रोध। लक्ष्मी देवी जो उनकी पत्नी हैं, वो भी उनके सामने आई तो घबरा गईं। ब्रह्मा जी इत्यादि ने कहा कि अरे जाओ, तुम्हारे पति हैं। उन्होंने कहा, ये मेरे पति नहीं है, ऐसे तो मैंने कभी देखा नहीं इनको, इतने क्रोध में। वो घबरा गई, देवता घबरा गए, सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा आप जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ही क्यों जाऊं हर समय सामने, वो भी इस समय मैं नहीं जाता सामने। घबरा गए ब्रह्मा जी भी, क्योंकि इतने क्रोध में थे, कभी उन्होंने देखा नहीं भगवान को इतने क्रोध में, तो कोई जाने तैयार नहीं। तो फिर ब्रह्मा जी को कहा, तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा। ब्रह्मा जी भी बड़े एक्सपर्ट हैं, जानते थे सामने जाऊंगा तो डांट पड़ जाएगी कि तुम्हारी वजह से ये सारा हुआ, तो पहले गुस्से में और गुस्से में हो जाएंगे, इसलिए ब्रह्मा जी तो पीछे रहे। ब्रह्मा जी बहुत गलतियां करते हैं, भगवान मना करते रहते हैं लेकिन सुनते नहीं, हमेशा गलतियां करते। अभी हिरण्यकश्यप को किया, फिर रावण को दे देंगे आगे, वरदान। ब्रह्मा जी करते रहेंगे और भगवान फिर डांटते हैं उनको। इसीलिए जब भगवान ब्रह्मा जी ये गलतियां करते हैं तो भगवान उनकी ओर ध्यान नहीं देते, और इतना ही नहीं, इतना सब करने के बाद वो भगवान की परीक्षा भी लेना चाहते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा कि तुम जाओ सामने। प्रहलाद को कोई भय नहीं, देवता घबरा रहे हैं, ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं, लक्ष्मी देवी घबरा रही हैं, लेकिन प्रहलाद, उनको कहा तो प्रहलाद ने कहा ठीक है, आप लोग कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ, मैं तो योग्य नहीं हूँ भगवान को कुछ कहने के लिए, लेकिन आप कह रहे हैं इसलिए चला जाता हूँ। तो छोटा से बालक चले गए, अब इतने से 5 साल के बालक हैं और भगवान इतने विशाल, आप जानते कितना साइज था, कितने फिट के थे भगवान, किसी को पता है, किसी ने हाइट नापी कभी नरसिंह देव की? एक उदाहरण बताया गया है, रावण आगे चलकर जब रामचंद्र जी से युद्ध करने वाला था तो नीचे बलि महाराज के पास गया, बलि महाराज नीचे सुतल लोक में रहते हैं, बलि महाराज के पास गया कि बलि महाराज मेरी मदद करो, आओ हम लोग युद्ध करेंगे, ये कोई मनुष्य आया है, राम और लक्ष्मण। बलि महाराज समझ गए क्या आदमी है, राम लक्ष्मण से युद्ध करना चाहता है। तो बलि महाराज ने कहा आओ चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ, तो पीछे ले गए। बहुत बड़ा मैदान था और उसमें 2 पर्वत थे, एक इधर और एक इधर, बड़े बड़े पर्वत, ये पर्वत तो कुछ भी नहीं है जो सामने है, और वो कैसे थे, सोने के थे, दोनों पर्वत सोने के बने हुए थे। और रावण की एक कमजोरी थी, सोना और स्त्री, वो जहाँ देखता था सब उसको भूल जाता था, सोना देखा वो भूल गया कि मुझे युद्ध करने जाना है। बलि महाराज ने कहा रावण देख रहे हो? रावण ने कहा इतना सोना आपके पास कहाँ से आया? बोले वो चिंता मत करो, तुम्हें चाहिए? बोले ले जाओ, पक्का ले जाओ? बोले हाँ ले जाओ। अब देखिए मरने वाला है, उस समय रामचंद्र जी रेडी घड़े मारने के लिए, उस समय भी सोने को उठाने के लिए भाग रहे, तो खैर ले जाओ। तो चला गया। अब रावण उठा रहा है उस पर्वत को सोने के, हिल ही नहीं रहा, बड़ा प्रयास कर लिया रावण ने, हिला ही नहीं, एक इंच नहीं हिला। तो रावण घबराए, त्रिलोकेश्वर इतनी शक्तिशाली, कैलाश को हिला दिया था, ये क्यों नहीं हिल रहा? तो फिर उसने पूछा बलि महाराज से है क्या? बलि महाराज बोले हिला तो पाए नहीं तुम इसको, अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। जिस समय नरसिंह देव के रूप में भगवान आए थे, हिरण्यकश्यपु उसको मारा था, तो जब वो मार रहे थे अपनी गोद में बिठाकर, तो हिरण्यकश्यपु के कान के 2 कुंडल यहाँ पे गिरे थे, ये वो 2 कुंडल हैं कान के उसके। तो आप सोचिए नरसिंह देव का क्या साइज होगा। हिरण्यकश्यपु के कान के कुंडल 2 पर्वत के समान लग रहे थे, वो उठा नहीं पा रहा था रावण, और उस हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में रखकर उन्होंने फाड़ डाला, तो क्या आकार होगा। और उनके सामने 5 साल का छोटा सा बालक प्रहलाद वो जा रहा है। और जब प्रहलाद आया सामने तो बड़े प्रसन्न हो गए नरसिंह देव, तुरंत प्रहलाद को उठा लिया, गोद में बिठाया, प्यार करने लगे, चाटने लगे। सिंह के रूप में आए हैं तो सिंह तो जब प्यार दिखाता है तो चाटता है, तो चाटने लगे। शायद इतिहास में एक ही उदाहरण ऐसा है कि भगवान ने अपने भक्त को चाटा हो। तो चाटने लगे, और प्रहलाद महाराज को कोई चिंता नहीं। आप लोग सोचिए कभी आपके साथ ऐसा हो जाए, एक शेर अपनी गोद में रखकर आपको चाटे, कैसा लगेगा, आनंद आएगा, है ना, कि एक शेर है और उसने अपनी गोद में रखा है और चाट रहा, चाटने तक तो पहुंचेंगे ही नहीं हम लोग, गोद में रखेगा तभी राम नाम सत्य हो जाएगा हमारा, भय से मर जाएंगे हम लोग। तो नरसिंह देव और कोई भय नहीं, प्रहलाद महाराज बड़े आराम से। तो जब सब देवताओं ने देखा कि हाँ अब शांत हो गए, चाट रहे हैं, प्रेम कर रहे, बहुत प्रेम किया प्रहलाद को नरसिंह देव ने, तो उसके बाद प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करनी शुरू की नरसिंह देव को। तो इन प्रार्थनाओं की चर्चा हम लोग रविवार को करेंगे, रविवार दोपहर को, कि जब प्रकट हो गए नरसिंह देव तो क्या प्रार्थनाएं उन्होंने अर्पण की। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं प्रहलाद महाराज की, तो कृपया आप सब
रविवार को दोपहर को आइएगा ताकि इन प्रार्थनाओं को श्रवण कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई